डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट यशाया 17:6-9-12 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट। यह यशायाह की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 6 यशायाह अध्याय 9-12 है। आप में से प्रत्येक को यहाँ देखकर खुशी हो रही है। आने के लिए धन्यवाद। आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। पिता, हम यहाँ आपकी उपस्थिति से आनंदित हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप स्वयं को अपनी इच्छा और अपने उद्देश्यों को प्रकट करने आए हैं। धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आपने कई अलग अलग तरीकों से हम में से प्रत्येक के सामने स्वयं को प्रकट किया है। धन्यवाद कि आपने स्वयं को सबसे ऊपर यीशु मसीह में प्रकट किया है। अनंत जीवन के वादे के लिए धन्यवाद जो हमारा है, क्योंकि वह आया है और जिया है और मर गया है और फिर से जी उठा है। धन्यवाद। जब हम आज रात आपके धर्म ग्रंथ के इस भाग का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारी मदद करें ताकि आप अधिक स्पष्ट रूप से देख सकें कि आप कौन हैं, आप दुनिया में क्या करना चाहते हैं और आप हम में क्या करना चाहते हैं। आपके नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। तथास्तु। यह खंड जिसे हम आज शाम को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, वह एक जटिल है और मैंने इसे यहाँ आपके लिए फिर से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। संपूर्ण खंड अध्याय 7:1-12:6 तक कोई भरोसा नहीं है। आहाज ने परमेश्वर पर भरोसा करने और 7:1-14 में अपने वादे का संकेत प्राप्त करने की चुनौती को अस्वीकार कर दिया। परिणामस्वरूप, क्योंकि उसने प्रभु के बजाय अश्शूर पर भरोसा किया, न्याय आ रहा है। हमने पिछले सप्ताह इसके बारे में बात की थी, लेकिन मैंने इसे पहले भी कहा है। मैं इसे अगले जून से पहले कई सौ बार फिर से कहूंगा। परमेश्वर का इच्छित अंतिम शब्द कभी भी निर्णय नहीं होता। उनका अभिप्राय अंतिम शब्द आशा है, और इसलिए हम उस अंधकार से आगे बढ़ते हैं जो हमने पिछले सप्ताह अध्याय 8 के अंत में देखा था, प्रकाश की ओर, आशा की रोशनी की ओर। लेकिन फिर वह वापस चला जाता है और हम आज रात इस बारे में बात करेंगे। यहाँ क्या चल रहा है? और मैंने इसे वास्तविक मुद्दा कहा है। वह वास्तविक समस्या क्या है जिसका हम यहाँ सामना कर रहे हैं? क्या इसराइल और सीरिया हमें गठबंधन में शामिल करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, या यह असीरिया है? और जवाब नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। असली मुद्दे के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। और फिर भगवान ने घोषणा की, मुझे लगता है कि वास्तविक मुद्दे के आलोक में असीरिया का न्याय किया जाएगा। हाँ, अश्शूर का प्रयोग तुम्हारा न्याय करने के लिए किया जाएगा, लेकिन अश्शूर स्वयं फैसले से बचने वाला नहीं है। और फिर एक बार फिर शाखा अध्याय 11। और अंत में ईश्वर ने मसीहा के माध्यम से हमारे लिए जो किया है, उसके आधार पर विश्वास का भजन। तो आज रात हम 9:1-12:6 तक कवर करने का प्रयास करने जा रहे हैं, और इसका मतलब है कि हम सभी को अपनी सीट बेल्ट बांधने की जरूरत है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा था, अध्याय 8 उसी अत्यंत गंभीर नोट पर समाप्त होता है। श्लोक 20। आइए अध्याय 8 के श्लोक 20 से शुरू करें। शिक्षण और गवाही के लिए। यदि वे इस वचन के अनुसार नहीं बोलेंगे, तो इसका कारण यह है कि उनका कोई सवेरा नहीं हुआ है। वे अत्यंत दुःखी और भूखे होकर देश से होकर गुजरेंगे। जब उन्हें भूख लगेगी, तो वे क्रोधित होंगे और अपने राजा और अपने परमेश्वर के विरुद्ध अपमानजनक बातें बोलेंगे और अपना चेहरा ऊपर की ओर कर लेंगे और वे पृथ्वी की ओर देखेंगे। परंतु देखो, संकट और अंधकार, पीड़ा का अंधकार, वे घने अंधकार में धकेल दिए जाएंगे। यदि हम ईश्वर के रहस्योद्घाटन से इनकार करते हैं तो हमारे लिए अंधकार के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन भगवान यहीं रुकना नहीं चाहते। सीधे अध्याय 9 श्लोक 1 में उसके लिए कोई उदासी नहीं होगी जो पीड़ा में थी। पहले समय में उसने जबूलून और नप्ताली के देश का अपमान किया। अब वे दो सबसे उत्तरी जनजातियां हैं जो अश्शूर के रास्ते में आती हैं। यह वह जगह है जहां उत्तरी साम्राज्य में पहली असीरियन लूटपाट हुई थी। पहले समय में उसने जबूलून और नप्ताली के देश का अपमान किया, परंतु बाद में उसने समुद्र के मार्ग को और यर्दन के पार के देश को और अन्य जातियों के गलील को महिमामय बनाया। और आपको याद है कि यीशु की प्राथमिक सेवकाई राष्ट्रों के गलील में कहां आयोजित की गई थी? वही स्थान जहां अंधकार ने भूमि को निगलना शुरू किया, वही स्थान है जहां भगवान अपना प्रकाश भेजेंगे। यही वह भगवान है जिसकी हम सेवा करते हैं। हाँ, हम अपने इनकार से खुद पर अंधकार ला सकते हैं, लेकिन यहीं पर भगवान हमें छोड़ने का इरादा नहीं रखते हैं। वह हम पर अपनी रोशनी चमकाना चाहता है। तो फिर हम उन अगले छंदों में पाते हैं, जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने एक बड़ी रोशनी देखी है। जो लोग घोर अंधकार के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तो हम यहां देखते हैं यह वादा, उस प्रकाश का वादा जिसे परमेश्वर चमकाने जा रहा है। अब ये वादा क्या है? श्लोक 4 और 5 को देखें। वादा क्या है? वह क्या करने जा रहा है? युद्ध को खत्म करने जा रहे हैं, है ना? इस पूरी स्थिति का सामना युद्ध के उपकरणों के साथ आने वाले इस राक्षस असीरिया से होता है। इज़राइल और सीरिया कह रहे हैं, हमें युद्ध के उपकरणों से उसका मुकाबला करना होगा। और यहां वादा यह है कि यह युद्ध को खत्म करने जा रहा है। विश्व के वादों का समाधान, क्षमा करें, विश्व की समस्याओं का समाधान युद्ध से हल नहीं होने वाला है। हे भगवान, यह कौन होगा? यह बच्चा होने वाला है? नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। यह अतुल्य हल्क होने जा रहा है। यह मॉन्स्टर मैन होने जा रहा है। वह आएगा और हमारे सभी शत्रुओं को हरा देगा। एक बच्चा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अब ठीक यहीं पर ध्यान दें बच्चों। यशाया के साथ आहाज से मिलने कौन जाता है? कतर यशुब केवल अवशेष ही लौटेगा। क्या वादा है? कुवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तुम हमारे साथ उसका नाम ईश्वर कहोगे। भविष्यवक्ता के पास जाओ और वह गर्भवती होगी और तुम बच्चे का नाम माहिर शलाल हशबाज रखना। प्रशंसा बिगाड़ने की जल्दबाजी को गति देती है। बच्चे 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 बच्चे, इस सब में भगवान क्या कह रहे हैं? मसीहा? लेकिन मसीहा को एक बच्चे के रूप में क्यों प्रस्तुत किया जाना चाहिए? अरे हाँ, लेकिन मेरा मतलब है कि संभवतः वह एक पूर्ण विकसित इंसान के रूप में बिंगो आ सकता था। शक्ति नहीं है। ओह, लेकिन 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 भगवान, हमें शक्ति की आवश्यकता है जैसा कि हम इसकी कल्पना करते हैं। ईश्वर की कमजोरी हमारी ताकत से ज्यादा मजबूत है। उसने ताकतवरों को भ्रमित करने के लिए इस दुनिया की कमजोर चीजों को चुना है। उसने बुद्धिमानों को भ्रमित करने के लिए इस संसार की मूर्खतापूर्ण चीजों को चुना है और यह सब यहां चल रहा है। हमारे यहां एक बच्चा पैदा हुआ है। अब ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हिजकियाह के बारे में यही बात हो रही है। हिजकियाह वह बच्चा है जिसके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं, जो राजा आहाज से पैदा होने वाला है। इसका एक प्राथमिक कारण है कि यह सत्य क्यों नहीं है। श्लोक 6 के अंत को देखें। यह बच्चा कौन है? अद्भुत परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, चिरस्थायी पिता, शांति के राजकुमार, उनकी सरकार की वृद्धि और शांति का कोई अंत नहीं होगा। नहीं, हम हिजकिय्याह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। संसार की आशा किसी हिजकिय्याह में नहीं है। हिजकिय्याह चाहे कितना भी अच्छा आदमी रहा हो, हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ यह एक प्रकार का स्नैपशॉट है। हाँ, आपने स्वयं पर निर्णय लिया है, लेकिन यह परमेश्वर का इरादा नहीं है। अब इसे छोड़ने से पहले मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इसके लायक होने के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ईश्वर की कृपा हम मनुष्य जो कुछ भी करते हैं उस पर निर्भर नहीं करती। हमें इसे बार बार रेखांकित करने की जरूरत है। अगर हमारे लिए कोई उम्मीद है तो इसलिए नहीं कि हम किसी तरह अपना घर व्यवस्थित कर लेंगे। हमारे लिए एकमात्र आशा यह है कि भगवान अपनी रोशनी से हमारे अंधेरे को तोड़ दें, और यही अच्छी खबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत अचानक और यशायाह को दो चीजें दिखाई देती हैं जो विरोधाभासी हैं। एक वह संक्रमण है जहां आप एक खंड से दूसरे खंड तक इतनी आसानी से प्रवाहित होते हैं कि आप बिल्कुल निश्चित नहीं होते कि एक कहां समाप्त होता है और दूसरा कहां शुरू होता है। दूसरी चीज जो उनकी विशेषता है वह है कोई परिवर्तन नहीं। और यहां देखें 9:8 को देखें। अब याद रखें कि आपको इसे हमेशा अपने दिमाग में रखना है, खासकर इस समय। इज़राइल का इस्तेमाल दो तरह से किया जा सकता है। इसका उपयोग पूरे देश में किया जा सकता है और इसका उपयोग उत्तरी साम्राज्य में किया जा सकता है, और आप हमेशा अपने आप से पूछते रहेंगे कि इनमें से कौन सा यहाँ के लिए अभिप्रेत है। खैर, ध्यान दें कि 8 और 9 वे क्या पढ़ते हैं। यहोवा ने याकूब के विरुद्ध एक वचन भेजा है, वह इसराइल पर पड़ेगा और सब लोग एप्रैम और सामरिया के निवासियों को जान लेंगे। दोनों में से कौन सा है? यह उत्तरी राज्य है ना? यहां इसका तात्पर्य उत्तर के शत्रु भाई से है जो यहूदा को धमकी दे रहा है। अब जैसा कि मैं यहां पृष्ठभूमि में इंगित करता हूं, यह 9:8 से 10:4 तक की एक कविता है जिसे बहुत सावधानी से संरचित किया गया है। इसमें 3 और 4 छंद हैं, जिनमें से 4 छंद हैं और प्रत्येक छंद एक ही श्लोक के साथ समाप्त होता है। श्लोक 12 के अंतिम वाक्य को देखें। यह क्या कहता है? इस सब के बावजूद उसका क्रोध शांत नहीं हुआ है, उसका हाथ अभी भी फैला हुआ है। अब हिब्रू में मुट्ठी के लिए कोई शब्द नहीं है, हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। इस सबके बावजूद उसका क्रोध शांत नहीं हुआ है, उसका हाथ अभी भी फैला हुआ है। ठीक है, श्लोक 17 के अंतिम वाक्य को देखें। यह फिर से है, और अब 10:4 का अंतिम वाक्य है। यह फिर से है। संभवत यही कारण है कि जिसने भी अध्याय विभाजन को 10:1 पर रखा, उसने अध्याय विभाजन को 10:1 पर डाल दिया, क्योंकि वह दुहक से शुरू होता है। अन्य 3 नहीं हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कविता 9:8 से 10:4 है। तो कुछ चीजें चल रही हैं जिनके बारे में भगवान क्रोधित हैं और उनकी मुट्ठी उठी हुई है। अब ये कौन सी बातें हैं? उस पहले श्लोक 8 सितंबर 2010, 11 और 12 को देखें। अहंकार अहंकार है जो अहंकार और हृदय के अहंकार में कहते हैं। ईंटें गिर गई हैं, हम तैयार पत्थरों से निर्माण करेंगे। गोलर काट दिए गए हैं, हम उनके स्थान पर देवदार लगा देंगे। अब आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि इस समय प्रकाशन व्यवसाय में एक घटना चल रही है। इस पर एक आदमी ने किताब लिखी है। दिलचस्प बात यह है कि 9:11 के अगले दिन मुझे पता है कि यह जॉन एडवर्ड्स नहीं था। बल्कि कोई व्यक्ति सीनेट में खड़ा हुआ और इस कविता को उद्धृत किया। खैर, मुझे लगता है कि बाद में एडवर्ड्स ने ही ऐसा किया। जब स्मारक बनाया गया तो सबसे पहले डेशले ने इसे बनाया और उसके बाद जॉन एडवर्ड्स ने इसे दूसरे स्थान पर बनाया। वे दोनों संदर्भ की जानकारी के बिना इसे उद्धृत कर रहे थे। यह अहंकार है। इतनी बढ़िया ईंटें गिर गई हैं कि हम इसे तैयार पत्थर से फिर से बना देंगे। भगवान कहते हैं, सौभाग्य तो इस पुस्तक के लेखक ने तब कहा है कि आह, ये छंद अब अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे खेद है, लेकिन नहीं। इन लोगों ने पाठ को गलत तरीके से उद्धृत किया और इस अर्थ में यदि हम इसे गर्व से कहते हैं तो हम उसी प्रकार के निर्णय के लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन यह हमारे बारे में बात करने के लिए नहीं लिखा गया था। ठीक है, तो यह नंबर एक का अहंकार है और हमने इसके बारे में पहले भी बात की है। हम इसके पूरा होने से पहले इसके बारे में कई बार बात करेंगे। यही मूल मुद्दा है। ईश्वर कौन है? इस पुस्तक के माध्यम से वह मुद्दा बार बार आता है और आपको याद है कि मुझे आशा है कि मैंने जो कहा है कि कई मायनों में अध्याय 7 से 39 अध्याय 6 के पहले तीन छंदों का परिणाम है। राष्ट्र को ईश्वर जैसा दर्शन प्राप्त करना है, मनुष्य को ईश्वर के दर्शन हुए और मनुष्य ने ईश्वर को ऊंचा और ऊंचा देखा, इंसान नहीं। तो यहां नंबर एक मुद्दा है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ईश्वर कौन है और हम कौन हैं। दूसरा श्लोक 13-17, मेल झूठे शिक्षक कह रहा है, महम्म झूठे शिक्षक, शासक जो ऊंचे और फूले हुए हैं। फिर यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हम अपने अध्ययन के दौरान बार बार बात करेंगे। मनुष्य के रूप में हमारी प्रवृत्ति मानवीय नेताओं की प्रशंसा करना और उनसे हमारी समस्याओं का समाधान करने की अपेक्षा करना है। यह अक्टूबर और नवंबर 2012 के लिए बेहद उपयुक्त है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप किसे वोट दे रहे हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि उनमें से कोई भी हमारी समस्याओं का समाधान करेगा तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होने वाला है। तो नंबर वन है अहंकार, स्वयं को ईश्वर के स्थान पर रखना। नंबर दो श्रेष्ठ मानव नेता, हमारी आशा ईश्वर में है। और हां, हम किसी न किसी तरह से दृढ़ता से महसूस कर सकते हैं कि किसे चुना जाना चाहिए। हालांकि यह दिलचस्प है, सुनकर आपको पता चलेगा कि यह बहुत स्पष्ट है कि जो कोई भी इस देश में निर्वाचित होता है वह बेहद खतरे में है। यदि आप डेमोक्रेट हैं तो रिपब्लिकन हमें बर्बाद कर देंगे। यदि आप रिपब्लिकन हैं तो डेमोक्रेट हमें बर्बाद कर देंगे। आप चाहे जिस भी तरह से चाहें, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो तीसरा नंबर क्या है? हां, जमीन झुलस गई है। मनुष्य ने एप्रैम को निगल लिया। एप्रैम ने मनुष्य को निगल लिया। वे सब मिलकर यहूदा के विरुद्ध हैं। हिंसा और क्रूरता। और आखिरी क्या है? जुल्म, जुल्म न्याय का अभाव। अब मुझे नहीं पता कि यहां कोई जानबूझकर प्रगति हुई है या नहीं, लेकिन यह दिलचस्प है। यदि आप सोचते हैं कि मानवता ही हर चीज का उत्तर है तो मानवीय नेताओं की प्रशंसा करना और उनसे आपकी समस्याओं का समाधान करने की अपेक्षा करना बहुत आसान है। और जब वे ऐसा नहीं करते हैं तो इसका परिणाम हिंसा और क्रूरता है जो उत्पीड़न और अन्याय पर आधारित है। अब यहां क्या हो रहा है? जैसा कि मैंने कहा, वो मुद्दा असीरिया है। नहीं 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 नहीं, मुद्दा यह है कि इज़राइल और सीरिया हमारे खिलाफ हैं, जो हमें असीरिया के खिलाफ गठबंधन में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मामला राजनीतिक है। मामला सैन्य है। मुद्दा यह है कि भगवान कहते हैं कि मुद्दा यह है कि आप मेरे और मेरे टोरा के बारे में क्या करने जा रहे हैं। मेरे निर्देश, क्या आप मुझे अपने जीवन में उचित स्थान पर रखेंगे? क्या आप यह जानने जा रहे हैं कि कोई भी इंसान आपकी समस्या का समाधान नहीं है? जब आपको प्यार नहीं किया जाएगा तो क्या आप प्यार करेंगे? क्या आप न्याय का अभ्यास करने जा रहे हैं जबकि बदले में आपको केवल अन्याय ही मिलेगा? मुद्दा यह है कि हम ईश्वर और उसकी टोरा के बारे में क्या करने जा रहे हैं। यही मुद्दा है, यही वह है जिसका हमें सामना करना है, भगवान कह रहे हैं। और यहां इज़राइल पर ध्यान एक तरह से कहा जा रहा है, क्योंकि आपके उत्तरी दुश्मन यहां पकड़ में नहीं आ रहे हैं, वे न्याय के अधीन हैं। आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। यहां उस वादे पर वापस आते हैं जो यशायाह ने उन राष्ट्रों से किया था, वह खत्म होने वाला है। इससे पहले कि आज गर्भ में आया यह बच्चा 12 साल का होगा, ये दोनों देश खत्म होने वाले हैं। यह ईश्वर है जिसके साथ आपको समझौता करना होगा। उस आलोक में हम अगले कदम पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब फिर से मैं इससे उबरने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। यदि आपके पास प्रश्न, टिप्पणियां या टिप्पणियां हैं तो कृपया उन्हें लिखें। करने की कृपा करें। इस अनुभाग के बारे में कोई प्रश्न या टिप्पणियां या टिप्पणियां? हाँ, हाँ, हाँ। यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि हम ईसाई भी बाकी सभी लोगों की तरह ही सनकवादी हैं। टिंडेल हाउस पब्लिशर्स का गोदाम बाकी चीजों से भरा हुआ है। तो अगली घटना क्या होगी? तो हाँ, यदि ईश्वर इसका हर तरह से उपयोग कर सकता है। लेकिन यह मेरे लिए बेहद आकर्षक है कि हम इन चीजों में कैसे फंस सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम ईश्वर को अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे अपने जीवन की कुंजी बनाएंगे तो हमें अश्शूरियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। श्लोक 5 से शुरू होने वाले अध्याय 10 में हमारे पास भगवान की घोषणा है। इज़राइल और सीरिया पर फैसला आने वाला है। अश्शूर पर न्याय आने वाला है। अब दिलचस्प बात यह है कि श्लोक 5 और श्लोक 15 के अनुसार असीरिया क्या है? भगवान का यंत्र। भगवान का यंत्र मेरे क्रोध की छड़ी, कुल्हाड़ी। अब मान लीजिए मैं कहूं कि ईसाई अमेरिका के रूप में हमारे लिए इस्लाम यही है। आप उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? मैंने आमीन सुना। खैर, ज्यादा विस्तार का खतरा हो सकता है क्योंकि हम खुद को एक ईसाई राष्ट्र कहते हैं, लेकिन हम वास्तव में एक ईसाई राष्ट्र नहीं हैं। हम ईसाइयों का देश हैं। इसलिए मैं इस विचार पर सवाल उठाऊंगा कि इस्लाम पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ईश्वर का उपकरण है। मुझे लगता है कि यह ईसाइयों के लिए एक उपकरण है। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि आप सही हैं। आप एक के लिए एक नहीं बना सकते। अमेरिका सीधे तौर पर इज़राइल के समकक्ष नहीं है। हम चुने हुए लोग नहीं हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम हैं। बाद में मुझसे मिलना। अच्छा, आप मुझे इस्लाम मत दो। यह एक ईसाई विधर्म है। क्षमा, यह एक ईसाई विधर्म है। हाँ, मैं सहमत हूं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या ईश्वर बेहतर समूह को दंडित करने के लिए एक बदतर समूह का उपयोग कर सकता है? और जवाब है हाँ। ठीक यही बात उसने हबक्कूक से कही थी। हबक्कूक ने कहा, हे परमेश्वर, तू अन्यायियों का न्याय क्यों नहीं करता? और भगवान कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि यह एक समस्या है। सोचो, मैं बेबीलोनियों को ला रहा हूं। और हबक्कूक कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और भगवान कहते हैं, मुझे देखो। तो फिर जब हम भू राजनीति को देखते हैं, तो हमें लगातार याद रखना होगा, भगवान अपने अच्छे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्दे के पीछे हैं। और यदि उसे हमारे शत्रुओं का उपयोग करने की आवश्यकता होगी तो वह करेगा। ओह हाँ, फिर से मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं वास्तव में सिर्फ यह बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम अपने दुश्मनों को देखते हैं, तो हमें इस संभावना पर विचार करने की आवश्यकता है कि भगवान काम कर रहे हैं। मैं यह कहने में झिझक रहा हूँ क्योंकि इससे ऐसा लगेगा कि आप इस मामले में नरम हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 9 से 11 का उदाहरण हमारा ध्यान खींच रहा था। निश्चित रूप से किया, निश्चित रूप से किया। ठीक है, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं, आप असीरिया को अपने अस्तित्व के लिए इस भयानक खतरे के रूप में देखते हैं। आपको असीरिया की समस्या का समाधान करना होगा। और परमेश्वर कहता है, हे अश्शूर, मेरे हाथ की लाठी है, तुम्हें मुझसे निपटना होगा और मुझे अश्शूर की देखभाल करने दो। तो असीरिया क्या सोचता है कि वह क्या कर रहा है? असीरिया सोचता है कि वे जीत रहे हैं। असीरिया सोचता है कि वे जीत रहे हैं। यह विचार कि वे यहूदा के इस छोटे से देश के परमेश्वर के साधन होंगे हास्यास्पद है। हाँ, अरे, मैं उस आदमी की तरह हूँ जो चिड़िया के घोंसले से अंडे निकाल रहा है। पक्षी कुछ नहीं कर सकते, वे फड़फड़ा और चहचहा भी नहीं सकते। परंतु पद 12, जब यहोवा सियोन पर्वत पर और यरूशलेम पर अपना सब काम पूरा कर लेगा, तब वह अश्शूर के राजा के घमंडी मन की वाणी और उसकी आंखों में घमंड की दृष्टि का दंड देगा। परमेश्वर वास्तव में कम दुष्टों को दंडित करने के लिए अधिक दुष्टों का उपयोग कर सकता है, परंतु अधिक दुष्ट इससे बच नहीं पाएंगे। और एक बार फिर परमेश्वर ने हबक्कूक से यही कहा, मेरा नैतिक नियम नहीं बदला है। वह दिन आएगा जब वे भी न्याय के कटघरे में खड़े होंगे। इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुद्दा अपना ध्यान सही जगह पर लगाने का है। हमने यहाँ पेड़ों और जंगलों के बारे में बात की है। श्लोक 18 और 19 को देखें। यहाँ पेड़ क्या दर्शाते हैं? फुटनोट न पढ़े। गिरे हुए फूलों के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, किताब में पेड़ों का इस्तेमाल दो अलग अलग तरीकों से किया गया है। एक है प्रचुरता, स्थिरता और फलदायिता। दूसरा है अहंकार, अभिमान और शक्ति। इस तरह इसका उपयोग यहाँ किया जा रहा है। हम असीरियन, हम एक विशाल जंगल की तरह हैं। और भगवान कहते हैं कि तुम मेरे हाथ में कुल्हाड़ी हो। मैं तुम्हारे पास कुल्हाड़ी लेकर जा रहा हूँ। उसके जंगल के पेड़ों के अवशेष इतने कम होंगे कि एक बच्चा, हम फिर से यहाँ हैं कि एक बच्चा उन्हें लिख सकता है। अब याद रखें, इस समय यशायाह के समय में असीरिया 200 वर्षों से दुनिया में प्रमुख शक्ति रहा है। 200 साल घटता बढ़ता रहा, लेकिन मुद्दा हमेशा असीरिया ही था। मुझे इसके बारे में अपने तरीके से सोचने दीजिए। दो सदियों से कोई चीज एक प्रमुख शक्ति रही है। वाह, और अब वे अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। और यह पागल यशायाह कहता है, परमेश्वर उन्हें एक क्षण में काट डालेगा। वे 650 में अपनी सबसे बड़ी ताकत पर आ गए और 40 वर्षों के भीतर असीरिया का अस्तित्व ही नहीं रहा। आप जो मैं हूं उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। फिर इस दूरी पर खड़े होकर हमारे लिए यह कहना आसान है, अरे हाँ, असीरिया उठा, दुनिया पर हावी हुआ और गिर गया। लेकिन जब आप इसके बीच में होते हैं तो वे हमेशा के लिए यहाँ आ जाते हैं। वे हमेशा यहीं रहने वाले हैं। ईश्वर वह है जो सदैव यहीं रहता है। और उसका बच्चा मसीहा, जिसके साम्राज्य का कोई अंत नहीं होगा। अश्शूर मेरे हाथ में एक छड़ी के सिवा कुछ नहीं है। अब मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। मैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नहीं कह सकता, जैसा यशायाह कह सकता है, ठीक है, इसका यही मतलब है। ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन मैं धर्मग्रंथ के आधार पर कह सकता हूं कि इतिहास पर ईश्वर का नियंत्रण है, और जो कुछ भी घटित होगा वह उसके लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी। वह अपने उद्देश्यों को पूरा करने जा रहा है। हो सकता है कि वे हमारे लिए बहुत सुखद न हों, लेकिन वह अपने उद्देश्यों को पूरा करने जा रहा है, और हम आत्मविश्वास के साथ जी सकते हैं। मुझे आज सुबह टेलर यूनिवर्सिटी के चैपल से बात करने का सौभाग्य मिला। अगर मैं यहां सोने जाऊं तो मुझे मत जगाना। लेकिन मैंने उन 1200 बच्चों को देखा और सोचा, मेरी उम्र होने से पहले उन्हें क्या सामना करना पड़ेगा। उनकी पीढ़ी इस समय किसी भी संख्या को रखे जाने के बाद से सबसे अछूती पीढ़ी है। और हम इंग्लैंड को देखते हैं। मैं महान पवित्रता सम्मेलन केस्विक के कुछ उपदेश पढ़ रहा हूं, और इंजिलवाद एक किशोर छोटा सा टुकड़ा है, 1% या 2% लगभग जापान में ईसाई धर्म जितना ही महत्वहीन। लेकिन इतिहास पर भगवान का नियंत्रण है, और इसलिए हम आत्मविश्वास के साथ जी सकते हैं। हाँ, एक लंबी लाइन। मैं अपने पोते पोतियों के बारे में सोचता हूँ। वे हमारे समाज में लगातार बढ़ती आक्रामक धर्मनिरपेक्षता के संपर्क में आने वाले हैं। लेकिन जो बात मुझे कभी कभी परेशान करती है वह यह है कि हम ईसाई ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे हम स्वतंत्र हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हमारा क्या होना चाहिए, मुझे क्या लगता है हमें क्या होना चाहिए? यह आत्मविश्वास होना चाहिए। यह आत्मविश्वास होना चाहिए। हम भगवान पर भरोसा करने जा रहे हैं। हम उसके लिए जीने वाले हैं, और परमेश्वर उन लोगों का उपयोग करने में सक्षम होगा जो उस पर भरोसा करते हैं अपने अच्छे उद्देश्यों के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अध्याय 10 श्लोक 20 से 27 के मध्य में भगवान वापस आते हैं और हिब्रू लोगों से बात करते हैं। पद 20 हमें बताता है कि क्या होने वाला है। जब अवशेष वापस आएंगे तो वे क्या करेंगे? वे प्रभु पर भरोसा करने जा रहे हैं, अश्शूर पर भरोसा करने के बजाय जिसने मारा। और फिर आप यशायाह को यह कहते हुए देखते हैं, यह पागलपन है। आप अपने दो उत्तरी पड़ोसियों से मुक्ति के लिए अश्शूर पर भरोसा क्यों करेंगे? असीरिया समस्या है। लेकिन वह दिन आएगा जब तुम होश में आओगे, और तुम इस संसार के अश्शूरियों पर भरोसा न करोगे, आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे। तो यह एक बात है जो वह कहते हैं। हाँ हाँ, तो वह कहता है, डरो मत। श्लोक 24। फिर यह कहना आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि यह उस सवाल का जवाब देता है जो आपने उठाया था। मैं, यदि आप इस स्थिति को देख रहे हैं जहां आपके विश्वास करने से इनकार करने के कारण असीरिया आकर आपकी नाक तक पहुंच जाएगा, तो डरो मत। और हम एक तरह से कहते हैं, ठीक है, आपके लिए यह कहना आसान है भगवान। लेकिन वह यही कहता है। और यही, जब हम अनिश्चित भविष्य का सामना करते हैं, जब हम अकल्पनीय परिवर्तनों का सामना करते हैं, भगवान कहते हैं, डरो मत, डरो मत, मैं नियंत्रण में हूं। अध्याय 10 का अंतिम भाग मध्य पर्वत से यरूशलेम की ओर आ रही एक सेना की तस्वीर है। फिर यह यशायाह के क्लासिक ग्राफिक चित्रणों में से एक है। यहां सूचीबद्ध गांव उत्तर से दक्षिण क्रम में हैं। और इसलिए वह आता है और जिस तरह से इसे लिखा गया है वह आपको तात्कालिकता और अपरिहार्यता का एहसास दिलाता है। वह धरती पर आ गया है, वह माइग्रोन से होकर गुजरा है, मिकमास में वह अपना सामान रखता है, वे दर्रा पार कर चुके हैं, गेबा में वे रात्रि विश्राम करते हैं। राम कांप उठे, शाऊल का गिबा भाग गया है। हे गलील की बेटी, ऊंचे स्वर से रो, ध्यान दो हे लैश, हे गरीब अनातोत, मदमाना उड़ान में है, गेबे के निवासी सुरक्षा के लिए उड़ान भरते हैं। इसी दिन वह नोब में रुकेंगे। नोब उत्तर की वह पहाड़ी है जहां आज हिब्रू विश्वविद्यालय स्थित है। यरूशलेम की ओर देख रहे हैं, वह नोब है। उसी दिन वह नोब में रुकेंगे। वह सियोन की बेटी के पर्वत अर्थात यरूशलेम की पहाड़ी पर अपना मुक्का मारेगा। वास्तविकता नहीं, देखो स्वर्ग की सेनाओं का परमेश्वर यहोवा भयानक शक्ति से डालियों को काट डालेगा। जो ऊंचाई में बड़े हैं उन्हें काट दिया जाएगा, ऊंचे को नीचा कर दिया जाएगा। वह जंगल के घने जंगल को कुल्हाड़ी से काट डालेगा और लबानोन को भव्य रूप से गिरा देगा। यरूशलेम की ओर दाई ओर, और भगवान कहते हैं कि यह काफी है। तो क्या इस शत्रु सेना की अद्भुत शक्ति ही वह वास्तविकता है जिससे आपको परिचित होना है? नहीं, ईश्वर वह वास्तविकता है जिसके साथ आपको जुड़ना होगा। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। विद्वान इस बात पर बहस करते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा कभी हुआ था। हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ऐसा हुआ। मुझे लगता है कि यह साहित्यिक है। मुझे लगता है कि यशायाह बस बात समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको लगता है कि यह अपरिहार्य है? क्या आपको लगता है कि बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है? हाँ, वहां है। ईश्वर सत्य है, शत्रु सेना नहीं। ऐसा होने पर हम अध्याय 11 पर आते हैं। अध्याय 6 श्लोक 13 याद है? हे प्रभु, आप कब तक चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार उपदेश दूं? जब तक पूरा देश जल न जाए, जब तक यह जले हुए ठूंठों का मैदान न बन जाए। परंतु अध्याय 6 श्लोक 13 पवित्र बीज उसका ठूंठ है। इसलिए एक बार फिर हमें वास्तविकता के बारे में सोचने के लिए कहा गया है। हे भगवान, अश्शूर का शक्तिशाली जंगल, यही हकीकत है। 11.1 के अनुसार वास्तविकता क्या है? जेसी के ठूंठ से एक अंकुर निकलेगा, छोटा हरा असहाय अंकुर। इस पर कदम रखें और यह मर जाएगा। वह ईश्वर की शक्ति है, वह ईश्वर की शक्ति है। उसकी जड़ से निकली एक शाखा फल लाएगी। भगवान, ब्रह्मांडीय बुराई की अविश्वसनीय समस्या का आपके पास क्या समाधान है? 15 वर्षीय कुंवारी जो गर्भवती है, क्या वह एक राजकुमारी है? हु? नहीं, वह एक शरणार्थी लड़की है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो भगवान। नहीं, मैं नहीं हूं। जेसी के स्टंप के बाहर से एक गोली निकलेगी। वही हमारा भगवान है, वह हमारा परमेश्वर है जो छोटी चीजों और सबसे कम चीजों का उपयोग करता है। अब मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता। मैं इसे वैसे भी पेश करता हूं। मुझे आश्चर्य है कि वह जेसी के स्टंप से क्यों कहता है, डेविड के स्टंप से नहीं। पुनः अध्याय 11 श्लोक 10 में हमें वही चीज मिली है। उस दिन यिशै की जड़। हाँ, लेकिन वे सिर्फ उन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जो नहीं जानते कि जेसी कौन है। ठीक है, जेसी एक यहूदी और एक अन्य जाति बोअस और रूथ का पोता है। डेविड पर पोता है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि यह एक वास्तविक संभावना है। मैंने जो पढ़ा वह यह था कि यह आहाज के खिलाफ एक थप्पड़ हो सकता है और शायद कश्ती पर भी प्रहार हो सकता है। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि हो सकता है। मुझे लगता है कि यह एक संभावना है। ये लोग कह रहे हैं, हम दाऊद के घराने हैं। दाऊद के घराने को कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। और ऐसा लगता है जैसे यशायाह कहता है, अरे यह डेविड नहीं है। डेविड कोई जादुई खरगोश का पैर नहीं है। यह परमेश्वर का वादा है जो डेविड के पीछे और आगे तक जाता है। मुझे लगता है कि यह एक संभावना है। वहां अन्य लोग भी हैं। हाँ, क्या वह नए जीवन एक नए राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता जो अस्तित्व में आ रहा है? क्योंकि मेरा मतलब है, यद्यपि यीशु वंश का है, लेकिन यह एक नया राज्य है जिसे यीशु ला रहे हैं। ठीक है, सुझाव यह है कि यह एक नया साम्राज्य है। यह केवल डेविड में ही निहित नहीं है। यह एक नया राज्य है जिसे यीशु ला रहे हैं। हाँ, कमजोरी की निशानी। डेविड को मजबूत माना जा रहा था। जेसी बस एक है। ठीक है, डेविड मजबूत है। वह राजा है। वह कर सकता है। जेसी कोई नहीं है। वह सिर्फ एक किसान है। हाँ, मुझे लगता है ये सब संभव है। और हम अंतिम उत्तर नहीं जानते हैं, लेकिन फिर से ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको बाइबल अध्ययन करते समय सोचने की जरूरत है। यह वहां क्यों है? मैंने यह हाल ही में नहीं बल्कि कई बार कहा है। यहां आकस्मिक रूप से कुछ भी नहीं है। यदि यह यहां है तो यह यहां है क्योंकि भगवान को हमसे कुछ कहना है। अब आपको क्या लगता है, पद दो में आत्मा पर जोर क्यों दिया गया है? प्रभु की आत्मा उस पर विश्राम करेगी। बुद्धि और समझ की भावना, सलाह और ताकत की भावना, ज्ञान की भावना और प्रभु का भय। आपको क्या लगता है वहां मुद्दा क्या है? ठीक है, यह वह भावना है जो मजबूत और सशक्त बनाती है। लेकिन इस बात पर जोर क्यों दिया जाए कि मसीहा आत्मा से भरपूर होगा? ठीक है, आत्मा का फल। ठीक है, ठीक है। वह कोई राजा नहीं है जो मानव शक्ति पर शासन करेगा। देह की शक्ति में वह दैवीय शक्ति से शासन करने वाला है। परंतु क्या प्रभु की आत्मा उन पर आती है? हाँ, हाँ, स्पष्ट रूप से मुझे लगता है वह बात कही जा रही है। यह बच्चा मानव राजत्व के मानदंडों के अनुसार शासन नहीं करेगा, मानव शक्ति के मानदंडों के अनुसार। ठीक है, चलो आगे बढ़े। लेकिन जो श्लोक 4 से शुरू होता है वह श्लोक 3 और 4 के बीच विरोधाभास का संकेत देता है। वहां क्या विरोधाभास है? उसके निर्णय की विधि। हाँ, हाँ, वह बार बार नहीं जा रहा है। मुझे लगता है कि यह भावना पर जोर को दर्शाता है। वह सतह से शासित नहीं होने वाला है। वह दिखावे से शासित नहीं होने वाला। वह भीतर से निर्देशित होने वाला है। वह धर्म से गरीबों का न्याय करेगा। वह पृथ्वी के नम्र लोगों के लिए समानता से निर्णय लेगा। वह पृथ्वी पर किससे प्रहार करेगा? उसके मुंह की छड़ी। अधिकांश राजा पृथ्वी पर आक्रमण कैसे करते हैं? उनके राजदंड के साथ। उनकी तलवार से यहां क्या बात है? शब्द की शक्ति। शब्द और हम समय नहीं लेंगे, लेकिन नोट मौजूद है। प्रकाशित वाक्य 19:15 प्रभु की वापसी के बारे में बात करते हुए कहता है कि वह अपने मुंह की छड़ी से पृथ्वी पर प्रहार करने जा रहा है। तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के तहत रहस्योद्घाटन करने वाला जॉन इसे उठा रहा है और कह रहा है कि हाँ, हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। अब फिर से आपके पास एक ग्राफिक चित्रण है। भेड़िया मेमने के साथ रहेगा। तेंदुआ बकरी के बच्चे के साथ लेट गया। आगे और आगे की ओर। इस परिच्छेद के बारे में सोचने से मुझे वर्षों पहले मदद मिली थी, जब सीएस लुईस ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ शाब्दिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम होते तो शेर को दंत चिकित्सा का काम करना पड़ता। शेर के दांत मांस फाड़ने के लिए ही बने होते हैं। वह घास नहीं चबा सकता। लेकिन अगर यह एक चित्रण है तो चित्रण का क्या मतलब है? शांति, यहां वापस बांधना। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, हिंसा, ये चीजें मानवता के लिए स्थानिक प्रतीत होती हैं। वह बदलने वाला है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, मेरे प्रीमिलेनियलिस्ट होने का एक कारण यह है कि मैं उस समय पृथ्वी को देखना चाहता हूं जब यीशु इस पर शासन करते हैं। मैं पृथ्वी को वैसा ही देखना चाहता हूं जैसा वह देखना चाहती थी। श्लोक 9 में कहा गया है, वे मेरे सभी पवित्र पर्वतों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या नष्ट नहीं करेंगे। यह श्लोक यशायाह 65 में बिल्कुल दोहराया जाता है, जब वह नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के बारे में बात करता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भर जाएगी। अध्याय 6, पृथ्वी यहोवा की महिमा से भरपूर है। और उसका अंतिम लक्ष्य यह है कि यह भगवान के ज्ञान से भर जाएगा। हम सब उसे जानेंगे। वह जाना जाना चाहता है। तो फिर पद 10, उस दिन यिशै की जड़ जो खड़ा रहेगा, यह संस्करण लोगों के लिए एक संकेत के रूप में कहता है। अध्याय 5 को देखें। कड़वे अंगूरों का बाग और वह पद 26 में कहता है कि वह क्या करेगा। वह दूर दूर के राष्ट्रों के लिए संकेत उठाएगा और पृथ्वी की छोर से उनके लिए सीटी बजाएगा। देखो, वे शीघ्रता से आते हैं। अब यहाँ जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह एक बैनर है। कुछ संस्करण एक पताका कहते हैं, लेकिन यह एक झंडे का विचार है। इसलिए अध्याय 5 में भगवान दुश्मन राष्ट्रों को बुलाने और उनके लोगों को नष्ट करने के लिए ध्वजस्तंभ पर एक झंडा फहराते हैं। अब उस दिन अध्याय 11 में यिशै की जड़ लोगों के लिए एक ध्वज के रूप में खड़ी होगी। जाति जाति के लोग उससे पूछेंगे और उसका विश्राम स्थान महिमामय होगा। वह पद 12 में इसे फिर से कहता है। वह राष्ट्रों के लिए एक संकेत खड़ा करेगा और इसराइल के निर्वासित लोगों को इकट्ठा करेगा। मसीहा वह ध्वज बनने जा रहा है जिसे ईश्वर ध्वजस्तंभ पर चलाता है। उन्होंने राष्ट्रों और लोगों को आने के लिए बुलाया, लेकिन यह उनका अंतिम उद्देश्य नहीं है। अंत में वह अपने राष्ट्र के मसीहा के पास जा रहा है जो सभी राष्ट्रों को आने के लिए बुलाएगा। अध्याय 2, अपने पर्वत पर भगवान का टोरा सीखने के लिए। हाँ हाँ हाँ। और इसलिए वह इस बारे में बात करता है कि राष्ट्र बंधुओं को वापस लाएंगे और एप्रैम अब यहूदा से ईर्ष्या नहीं करेगा, बल्कि वे शत्रु राष्ट्रों पर आक्रमण करेंगे। इस पुस्तक में हम जिन चीजों को देखने जा रहे हैं उनमें से एक यह है कि राष्ट्रों के पास विकल्प है। वे या तो आ सकते हैं और सियोन पर्वत पर इसराइल के साथ परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, या वे इसराइल के गुलाम होंगे। वे विकल्प हैं। यह कौन सा होने वाला है? पद 16, अश्शूर से उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए एक राजमार्ग होगा जैसा इसराइल के मिस्र देश से निकलने के समय हुआ था। यदि आप परमेश्वर के संपर्क में आ जाएंगे तो आपको अश्शूरियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। उनका न्याय किया जाएगा और आपका मसीहा सभी देशों को आने का आह्वान करने वाला झंडा होगा। और यदि वे परमेश्वर की महिमा और ज्ञान का अनुभव करेंगे। ट्रीज बैनर हाईवे, ये तीन विषय हैं जो पूरी किताब में बार बार आते हैं। तो पद 16 उसके लोगों के बचे हुए लोगों के लिए अश्शूर से एक राजमार्ग होगा। हाँ हाँ, यदि आप अश्शूर पर भरोसा करते हैं तो वह दिन आएगा जब वह आप पर हमला करेगा और आपको नष्ट कर देगा। परंतु परमेश्वर का इरादा इसे यहीं समाप्त करने का नहीं है। एक दिन वह तुम्हें फिर से घर लाने का इरादा रखता है, अश्शूर से मिस्र से पृथ्वी की छोर तक। और निश्चित रूप से हम ऐसा होते हुए देखने के लिए जीवित रहे हैं। बस अकल्पनीय। ये लोग 1700 साल पहले पूरी दुनिया में फैले हुए थे, वस्तुतः उन सभी लोगों द्वारा जिनके बीच वे रहे हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। उन्होंने सभी बाधाओं के बावजूद अपनी पहचान बनाए रखी है और अब वे अपनी भूमि पर वापस आ गए हैं। मैं इसे कई बार कहूंगा कि असीरिया, इज़राइल आज 90% नास्तिक हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमें हर उस चीज को उचित ठहराने की जरूरत नहीं है जो इज़राइल एक राजनीतिक इकाई के रूप में करता है। दूसरी ओर मुझे विश्वास है कि ईश्वर का हाथ अभी भी उन पर है और बेहतर होगा कि हम उनके साथ खिलवाड़ न करें। हाँ, मुझे लगता है कि आप YouTube पर जो देखते हैं, मैं उससे बहुत अनजान हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारी गलत सूचनाएं हैं। किसी ने मुझे इस सप्ताह एक भेजा था जो अविश्वसनीय रूप से खराब था, और वह व्यक्ति एक ईसाई धर्म प्रचारक जो यीशु द्वारा एंटीक्रिस्ट नाम दिए जाने के तथ्य बता रहा था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह नाम कौन है, और उसने कहा कि आप मुझे जानते हैं, मैं आपको सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ। और उनके पास 7 तथ्य थे, 6.5 गलत थे और बाकी आधे को गलत समझा गया था। इसलिए मैं YouTube पर जो कुछ भी देखता हूँ उसके प्रति बहुत उत्सुक हूँ। ठीक है, मुझे 12:1-6 के बारे में बात करने दीजिए और हम वापस पटरी पर आ जाएंगे। याद रखें, हम अगले सप्ताह नहीं मिल रहे हैं, हम 5 नवंबर को मिलेंगे। वह शेड्यूल से अलग है। हम अगले सप्ताह नहीं मिलेंगे, हम 5 नवंबर को मिलेंगे। ठीक है, तो परिणाम क्या है? भगवान अपने मसीहा के रूप में आए हैं। वह अपने लोगों का उद्धार करने आए हैं। आप उस दिन कहेंगे कि मैं आपको धन्यवाद दूंगा, हे भगवान, भले ही आप मुझसे नाराज थे, लेकिन आपका गुस्सा दूर हो गया ताकि आप मुझे प्रोत्साहित कर सकें। जब आप बाइबल में सांत्वना देखते हैं तो सोचें कि प्रोत्साहित करें, यह हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सांत्वना है, एक गर्म फजी है, ओह आप बहुत अच्छे हैं। नहीं, शब्द ने रीढ़ की हड्डी में स्टील डाल दिया है, आपका क्रोध दूर हो गया है कि आप मुझे प्रोत्साहित कर सकते हैं, भगवान ही मेरा उद्धार है, मैं क्या करूंगा, किस पर भरोसा करूंगा, इसलिए मैंने उस पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन पर भरोसा किया और खुद पर फैसला सुनाया। लेकिन ईश्वर अपने मसीहा को क्षमा, प्रोत्साहन और मोक्ष के साथ दयालुता से देता है, और इसलिए मैं उस पर भरोसा करूंगा। मुझे पहले ही उस पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मैंने अब तक ऐसा नहीं किया है। उसने जो परिणाम प्राप्त किया है वह अनुग्रह के साथ आता है। मैं भरोसा करूंगा और इसके लिए डरूंगा नहीं। प्रभु परमेश्वर मेरी शक्ति और मेरा गीत है, वह मेरा उद्धार बन गया है। यह लाल सागर के दूसरी ओर मूसा के गीत का एक उद्धरण है। आप खुशी के साथ मोक्ष के कुओं से पानी निकालेंगे और उस दिन कहेंगे कि धन्यवाद करो प्रभु से, उसका नाम पुकारें, उसके कार्यों को लोगों के बीच प्रकट करें। हाँ अध्याय दो आपके पास एक मिशन है, अध्याय चार आपको शुद्ध किया जाएगा और स्वच्छ बनाया जाएगा। क्यों? मिशन के लिए प्रभु की स्तुति गाओ क्योंकि उसने शानदार काम किया है। इसे पूरी पृथ्वी पर प्रकट किया जाए। विश्वासी चुप नहीं रह सकते, खुशी के लिए चिल्लाओ हे सियोन के निवासियों। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बीच में इसराइल का पवित्र पवित्र सर्वोत्कृष्ट महान है, किसी अन्य से भिन्न, जिसने अपने आप को इसराइल के लिए समर्पित कर दिया है। वाह, उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने इसराइल के पवित्र को हर बार पवित्र किया। आप यशायाह में उस वाक्यांश का सामना करते हैं, उन दो ध्रुवों के बारे में सोचें। वह इसराइल का पवित्र व्यक्ति है, उत्कृष्टता से परिपूर्ण। ठीक है, मैं 8 बजे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सप्ताह नहीं मिलेंगे, हम 5 नवंबर को मिलेंगे और हम बात करेंगे अध्याय 13 और 14 के बारे में। यदि आप अंदर आए तो आपको अध्ययन मार्गदर्शिका नहीं मिली है, तो वह मेज पर मौजूद है। यह यशायाह की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 6 यशायाह अध्याय 9 से 12 है।